ओम शांति। सभी भाई बहन प्यार से बोलो ओम शांति। बाबा ने आज जो अव्यक्त वाणी हमने सुनी उसमें हमको एक खास बात कही है कि हमारा असली रूप आत्मा है, जो शांति धाम में बाबा के साथ रहने वाली है। और बाबा भी परम आत्मा है, और जैसे बाबा शरीर का आधार लेकर इस समय संगम युग में पाठ बजाते हैं, हम आत्माएं भी 84 शरीर का आधार लेकर सारे ड्रामा में पाठ बजाते हैं। धीरे धीरे हम अपने आप को शरीर मानने लग गए हैं, जो असली चीज नहीं है। तो बाबा ने कहा है हर प्रकार की समस्याओं आदि से ऊपर रहने के लिए सदा अपने आप को असली आत्मा रूप मानो, और इस शरीर के द्वारा मैं पाठ बजा रही हूं इसका आधार समझो, मैं शरीर नहीं हूं। उसी भाव से हम जो प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणी हमने 30 तारीख को सुनी उसको रिवाइज करते हैं और उस पर मनन और चिंतन करते हैं। भक्ति मार्ग में हम एक ही शास्त्र को एक जन्म नहीं अनेक जन्म उसी शास्त्रों को पढ़ते आए हैं, लेकिन बाबा की मुरली तो केवल एक दो बारी रिपीट हो रही है, इसलिए हमको नई लगती है। आप सब तो यहां शरीर में बाबा से मिलने आए। कई बहन भाई सोचते हैं कि मुरली तो वीडियो में आती है, हम घर में वीडियो बैठ करके अपने आराम से देख लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना भोजन भी मंगवा लेते हैं और अपने कमरे के अंदर टीवी में वीडियो बाबा की वीडियो देखते हैं। उनको वो रस आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरी मुरली मधुबन में ही बजती है। तो क्या होता है, वो सोचते हैं कि बाबा तो है नहीं, मधुबन में तो बाबा आएगा नहीं, तो हम घर में ही देख लेते हैं, ये तो वीडियो है। वो भूल जाते हैं कि भक्ति में भी जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों में भी बाबा चैतन्यता डाल के भगत को दर्शन करा देता है। तो जो बाबा सर्वशक्तिवान है, जो मूर्ति के अंदर भी चेतनता डाल के भगत को दर्शन करा देता है, क्या वह अपने बच्चों को जो उसकी वही मुरली सुन रहे हैं जो स्वयं यहां सुनाई थी वहां आकर के बच्चों को वासना नहीं देगा क्या? तो आप लोगों को क्या महसूस हुआ? ये महसूस हुआ कि बाबा मुरली चला रहे हैं सचमुच आज, या ये हुआ कि हम वीडियो देख रहे हैं? जो समझते हैं हमको बाबा की वहां पर मौजूदगी की, बाबा की प्रेजेंस की वाइब्रेशन आए, वो हाथ उठाओ। ठीक है, क्योंकि आप यहां आए तो उसी भाव से आए। तो बाबा अगर भक्तों को दर्शन दे सकता है तो हमको जो डायमंड हॉल में बैठकर बाबा की मुरली सुनेंगे उनको वासना नहीं देगा क्या? अपने मन से अगर कोई वीडियो समझ लेता है तो उसकी मर्जी है। अब हम ये मुरली वास्तव में 31 अक्टूबर 2007 की है, जो कल रिवाइज हुई थी अब हम उसको वर्ड बाय वर्ड सुनते हैं और उस पर मंथन करते हैं। मुरली का हेडिंग है अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में, अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रहकर असंभव को संभव करते हुए बेफिक्र बादशाह बनो। तो बाबा ने यहां फिक्र और फखुर दो शब्दों को साथ साथ जोड़ा है। अगर आपको फखुर है तो फिक्र नहीं हो सकता, और अगर आपको कोई फिक्र है तो समझो कि फखुर में कोई ना कोई कमी है। तो फखुर को क्या कहते हैं, अपना नशा, अपनी मस्ती, अपना सेल्फ प्राइड। और फिक्र तो फिर अगर बादशाह को भी फिक्र हो जाए तो बादशाह काहे का रहा, इसलिए बाबा बेफिक्र बादशाह कहते हैं। एक था बादशाह, वो शाम को सारे नगर का चक्कर लगा के थका हुआ अपने महल में आया और अपने दरबान को बोला, आज मैं बहुत थक गया हूं, सीधा सोने जाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, जैसी आपकी इच्छा। तो जब वो अपने सोने वाले महल में एंटर होने लगा तो दरबान ने कहा, हजूर, आज दिन में एक काला सांप आपके इस बेडरूम में घुस गया था, हमने बहुत कोशिश किया पर वो मिला नहीं, पर आप तो बादशाह हैं, सब चीज के बादशाह हैं, अगर आपको सांप क्या कहेगा, आप आराम से सो जाओ। अब वो तो कह के चला गया, तो आपके ख्याल में बादशाह को नींद आई होगी क्या? तो इसलिए बाबा कहते, फिक्रमंद बादशाह जो है वो तो चिंता में आ गया ना। हमें बाबा कहता है, आपके पास मैंने दो चीजें दी हुई हैं, जिस कारण से आप कुछ भी हो जाए आप चैन से सो सकते हो। वो दो चीजें मुरली में आएंगी, लेकिन हेडिंग यही है कि मेरे सब बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं और उनको रहना चाहिए। तो मुरली शुरू हो रही है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। एक तरफ बाबा के थोड़े से बच्चे और एक तरफ सारे विश्व के आत्माएं। बाबा कहते हैं, सारे विश्व की किसी आत्मा में भी ऐसा विशेष समान और श्रेष्ठता नहीं है जो बाबा के हर एक बच्चे में है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। कैसे? कि सबसे पहले इस सृष्टि पर हम आत्माएं उतरे तो सबके पूर्वज हो गए, इसीलिए ब्रह्मा जी को आदि देव कहते हैं। हर धर्म वाले ब्रह्मा जी को अपना पूर्वज मानते हैं, चाहे वो अंग्रेज लोग उसको एडम कहें, मुसलमान लोग उसको आदम कहें, हम उसको ब्रह्मा कहें, तो उसके साथ साथ उसके बच्चे भी पूर्वज हो गए। और फिर बाबा कहते पूज्य हो, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर और किसी के शरीर के साथ इस प्रकार से मंदिर बना के पूजा नहीं होती जितनी हमारे पूर्वजों की होती है। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। जैसे किसी भी चीज का फाउंडेशन होता है, इसी प्रकार के वृक्ष का जो फाउंडेशन होता है झाड़ का, तो जिसको शायद कन्नड़ भाषा में मड़ा कहते हैं, उसका तो वो जो है वो उसका जड़ होता है, तो जड़ के ऊपर सारा वृक्ष खड़ा रहता है। अच्छा, अब ये गिद्दा मड़ा है या तन्ना मड़ा है, आप लोग जानते हैं। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष को बाबा ने क्या दिखाया हुआ, सबसे विशाल वृक्ष है। अब बाबा कहते हैं कि सारे विश्व के पूर्वज और पहली रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, देवताओं की रचना, धर्म स्थापकों की रचना और है, डायरेक्ट परमपिता परमात्मा की रचना, शिव की रचना, बाबा के बच्चे हम हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे कौन कौन हैं, क्या बन गए, उसको देख के खुश होता है। तो दुनिया के पिता तो दुनिया का स्टेटस देखते हैं, पर बाबा कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा पूर्वज है, मेरा एक एक बच्चा पूजनीय है, मेरा एक एक बच्चा आधार मुहूर्त है। तो एक बाप के इतने सभी बच्चे ऐसे होंगे तो बाप कितना खुश होगा। जो अन्य है वो कहते हैं मेरे डायरेक्ट बच्चे नहीं है। फिर बाबा कहते हैं चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। बाबा ने बच्चों को एक कैटेगरी में डाल दिया, बुजुर्ग माताओं को एक में डाल दिया और बाकी जो है प्रवृत्ति वालों को एक में डाल दिया। हर की अपनी अपनी विशेषता है। बच्चों की क्या विशेषता है, प्रवृत्ति वालों की क्या विशेषता है, माताओं की, वो तो डिटेल है, पर अब बाबा ने क्या बताया वो सुनिए। आजकल के जितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, जो प्रकृति जीत तो बने और चंद्रमा तक भी पहुंच गए। आखिर उन्होंने प्रकृति को जीता, कुछ नियमों को जीता, तभी चंद्रमा तक पहुंचे। अच्छा, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सके। और यहां छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं जानता है। किसी भी बच्चे को आप बुला के पूछो आत्मा कहां है, वो फौरन हाथ लगा के बताएगा यहां है। परम धाम कहां है, वो बोलेगा वहां है। साइंसदान होगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा। बाबा कहते फलक से कहता है मैं आत्मा हूं। बच्चों ने गीत भी बनाया हुआ है, हम आत्मा तुम आत्मा आपस में भाई भाई। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ये ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हैं हमने परमात्मा को पा लिया है ना। अब बाबा पूछ रहा है माताओं ने बाबा को पा लिया तो हाथ उठाओ, दायां हाथ, राइट हैंड। देखो कई कन्याएं नहीं उठा रही, उन्होंने शायद नहीं पाया, क्योंकि बाबा ने माताओं को बोल दिया ना, इसलिए जो हाथ नहीं उठाएंगे बाबा उनके एब्सेंट लगा देगा, या तो देह भान होगा, पता नहीं, भाई साहब हाथ उठवा रहे हैं, ये तो मुरली में आया है, इसलिए हाथ उठाना आपके हित में है। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं पा लिए है ना, और महात्मा क्या कहते हैं। परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, कई जन्म लगते हैं, कई जन्मों की तपस्या लगती है। और प्रवृत्ति वाले, अब बाबा ने अलग अलग विशेषता बताई थी ना, प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं। प्रवृत्ति वालों की फिर और विशेषता है असंभव को संभव करना। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं, क्या चैलेंज करते हैं, कि हम साथ में रहते पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ में रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं। बताओ दुनिया का और कोई कहता है, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। बाबा ने क्या बोला, आत्मा का स्वधर्म ही पवित्रता है, और पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। पवित्रता ही हमको पूज्य बनाती है, पवित्रता ही हमको पूजनीय बनाती है। और बाबा तो हमेशा मिसाल देते हैं कि छोटी कन्या को माता पिता भी पांव धोकर पूजते हैं, उसके आगे सब झुकते हैं, वो किसी के आगे नहीं झुकती है। जो ही उसकी पवित्रता भंग हुई वो घूंघट निकाल के हर एक जो आएगा उसके पांव को हाथ लगाएगी। फर्क हो गया ना। सन्यासी भी बाबा कहता है घर छोड़ के चले जाते हैं, पवित्र बनते हैं तो लोग उनको सम्मान देते हैं। तब करके बाबा कहते हैं पवित्रता हमारा स्वधर्म है और पर धर्म मुश्किल होता है, लेकिन सो धर्म सहज होता, बहुत सहज है। आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था, वो बाबा खुद गीत बनवाया करते थे। ये गीत तो हमने बहुत कम सुना है, प्राणी बहनों को याद होगा। वो गीत था कितने भी सेठ हैं स्वामी हैं, लेकिन एक अलफ को नहीं जाना है उन्होंने, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया और पा लिया, सिर्फ जाना नहीं उसको पा भी लिया। इतने निश्चय और फखर से बोलते हो असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देखकर हर्षित होते हैं, क्यों कि हिम्मत बच्चे मदद बाप है। बच्चों ने हिम्मत की है तो बाप ने उनको मदद की है। उनको बाप का ही पता नहीं तो ना उससे मदद ले सकते हैं तो ना वो हिम्मत रख सकते हैं। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वो आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। फखर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इतना बड़ा फखर किसी को होगा कि परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। अब ये बताओ कि परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे देवता हैं या ब्राह्मण हैं? परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे ईश्वरीय संतान देवता हैं या ब्राह्मण हैं? देवताएं देवताओं की संतान हैं, वो दैवी कुल है, ये ईश्वरीय कुल है, इससे बढ़िया कुल तो कोई हो नहीं सकता। अब बाबा कहते हैं इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्म बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं। कोई थानेदार का बच्चा भी होगा तो चोर डरेगा, कोई इसको पकड़ेंगे, रेस का तो बाप थानेदार है। अच्छा, और जो भगवान का बच्चा होगा माया उसके नजदीक आएगी, वो कहेगी इसको हाथ लगा के मरना है मैंने, ये तो भगवान का बच्चा है, उसको करंट आएगा, इसलिए दूर ही रहेगा। तब बाबा कहता है कि परमात्म बच्चे होने के कारण बचे हुए हैं। इससे एक और बहुत बढ़िया प्यारी बात निकलती है, क्या? जो बच्चा रहेगा वो बचा रहेगा। अब आप बताओ कि सभा के अंदर कई ओल्ड एज वाले भी बैठे हैं, कई बड़े बड़े आयु के बैठे हैं, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 30 साल, तो अपने आप को बच्चा कहोगे कि नहीं कहोगे भाई? हैं, या हम बड़े हैं? तो हमेशा कहते बाबा हम आपके बच्चे ही हैं। बच्चा अपने बाप का तो बच्चा ही रहता है ना, चाहे दूसरे बच्चे का बाप भी बन जाए। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे हैं इसलिए बचे हुए हैं, तो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना, ठीक है? बड़े बड़े कहना, सदा सुखी रहना, बड़ा कहाना मुसीबत में आना। तो जो ही आपने समझा हम बड़े हैं बच्चे नहीं हैं तो मन मत आ जाएगी। बच्चा तो माता पिता का कहना मानता है, बड़ा क्या सोचता है, माता पिता क्या समझाएंगे, मुझे बहुत अकल आ गई है, ये धोखा नहीं खाना। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पे कौन चलेगा जो बच्चा होगा। तो इसलिए अपने इतने श्रेष्ठ सम्मान को जानते हो ना, क्यों सहज है? बाबा ने कहा तुम्हारे लिए मुश्किल आसान क्यों है? अब सुनिए, क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। साइलेंस की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और साइलेंस की शक्ति में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होकर साइलेंस की दुनिया में जाते हैं। जब तक साइलेंस की शक्ति यूज नहीं करेंगे परिवर्तन नहीं होगा। बोलने की शक्ति, अन्य जितनी भी शक्तियां हैं, बुद्धि की शक्ति, धन की शक्ति, शरीर की शक्ति, परिवार की शक्ति, पद की शक्ति, पोस्ट की शक्ति, कोई काम नहीं आएगी, परिवर्तन नहीं करेगी और ये अभिमान बढ़ाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति से परिवर्तन में कार्य में लगाते हो। क्या परिवर्तन करते हैं? नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। बाबा ने बताया हुआ है हर चीज का एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो साइलेंस की शक्ति वाला उसका पॉजिटिव देखेगा और दूसरी शक्ति वाला उसका नेगेटिव देखेगा। तो नेगेटिव से चिंता भय उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव वाला सदा निश्चिंत रहेगा, बेफिक्र बादशाह रहेगा। इसलिए माया कितने भी समस्या के रूप में आती है लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान रूप बना देते हो। सारी दुनिया समस्या स्वरूप है, बाबा के बच्चे समाधान स्वरूप हैं, हमारे पास समस्या आ ही नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? आप बताओ, आप बीकेज में इतनी ताकत है कर्नाटक वालों में जो कारण नहीं निवारण और समस्या नहीं समाधान रूप है? क्योंकि बाबा को समाधान रूप बच्चे, निवारण रूप बच्चे चाहिए। एक बार फिर हाथ उठाओ, अच्छा रहेगा आपको। मुरली सुन रहे हैं, अरवाई सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं कोर्स भी तो यही कराते हो ना कि नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। इस परिवर्तन शक्ति द्वारा, ये परिवर्तन शक्ति तुम्हें बाप से वर्षे में मिली है और दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, विश्व परिवर्तन नहीं कर सकता, चाहे कोई धर्म स्थापक हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, कुछ भी करेगा सीढ़ी नीचे जाएगी, लेकिन परिवर्तन करने वाला पिता और उसके बच्चे वो परिवर्तन की शक्ति को यूज करना जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम विधि सिखाते हो, ये परिवर्तन शक्ति बच्चों को बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्मा से वर्षा मिला है। वैसे हम अष्ट शक्तियां कहते हैं गिनाने के लिए, लेकिन गिनोगे तो सर्व शक्तियां बाबा के बच्चों के पास हैं। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्तियों को धारण करने के लिए हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तो बाबा का वर्षा क्या है? प्रेम, शांति, सुख। तो यही वर्षा शक्तियों का फल है, क्योंकि सतयुग में आपके गुण ही गुण हो जाते हैं। सतयुग में शक्तियों की जरूरत नहीं रहती। आप देखोगे देवताओं की डिग्री है सर्व गुण संपन्न, देवताओं की डिग्री में सर्व शक्ति संपन्न नहीं है। क्यों? कि जब फल निकल गया, गुण है फल, शक्तियां उसके पीछे ताकत। तो जैसे किसी पेड़ की ताकत से उसका आम निकल आया तो आम में सारी शक्ति आ गई, फिर आपको पेड़ का पत्ता टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? क्योंकि वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो, तो बाप की याद प्राप्तियों के द्वारा आती है। भगत लोग क्या करते हैं, वो पहले तो भगवान को जानते ही नहीं, फिर उसको याद करते हैं तो वर्षे का तो उनको नाम ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, हे परमात्मा बस मुझे उठा ले और मोक्ष में भेज दे, दोबारा मैं इस दुनिया में कभी नहीं आऊं। तो इसमें वर्षा हुआ क्या? और झूठ बोलते हैं। अगर सचमुच मोक्ष में जाने के लिए कोई लेने आ जाए तो कहेंगे मैं मरना नहीं चाहता, मेरी आयु लंबी हो जाए। कोई भी गृहस्थी के पास तो मांगने के लिए साधु आता है तो क्या आशीर्वाद देता है? धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्वान भव, तब उसको मिलता है कुछ। अगर वो कह दे मुक्त हो जा सदा के लिए, दुनिया छोड़ दे, तो फिर क्या उसको कि देगा कोई पैसा? तो ऊपर ऊपर से कहते हैं मोक्ष मरना तो चाहते नहीं। बाबा कहते हैं आपको तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो किसी फकीर को बादशाही मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी, वो चक्कर लगाएगा जो बादशाही देने वाला है। तब बाप कहते हैं बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। किसी के दादाजी के पास प्रॉपर्टी हो तो दादाजी के पांव दबाना शुरू कर देता है, कुछ प्रॉपर्टी दे जाए मेरे लिए। इसलिए बाबा कहते हैं वर्षा ही बाप को याद कराता है। और ये भी कहा गया ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। हर एक बच्चे को ये रूहानी फखर रहता है, दिल में गीत गाते हैं। वो कौन सा गीत है जिसमें सब कुछ आ जाए? पाना था जो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सभी के दिल में ये स्वतः ही गीत बजता है ना, फखर है ना। जितना इस फखर में रहेंगे तो फखर की निशानी है बेफिक्र। कोई धनवान होता है तो बार बार थोड़ी याद करता है कि मैं धनवान हूँ, अपना पासबुक देखता रहता है। कहीं भी जाएगा, सोएगा, उठेगा, उसको पता है कि मैं धनवान हूँ, उसको फखर रहेगा मैं धनवान हूँ। कोई व्यक्ति को किसी प्रांत का कलेक्टर भी बना दो तो हर वक्त चलते फिरते उसी में रहता है फखर में, मैं कलेक्टर हूँ यहाँ का। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि तुमको बाबा ने बना दिया सज्जू के राजकुमार, तो राजकुमार को नशा तो रहेगा ना, मैं राजकुमार हूँ। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो समझो फखर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। अब बाबा कहते हैं बोलो बेफिक्र बादशाह हो है तो हाथ उठाओ जो फिक्र बेफिक्र बादशाह। बाबा कह रहा है आपको चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है तो हाथ उठाओ। मैं होता तो दो हाथ उठाता, आप तो एक ही उठा रहे हो, बहुत अच्छा। अच्छा फिर बाबा पूछ रहे हैं फिक्र बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है? अच्छा है, जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? हैं? जब उसे ही गम नहीं तो हमें क्या गम है? लेकिन बेफिक्री दो तरह की होती है। एक होती है अलबेलेपन की बेफिक्री, वो नहीं करना कि कई बच्चे पढ़ते ही नहीं कि मैं बेफिक्र हूं, पढ़ाई के इम्तिहान आएगा तो फेल हो जाएंगे। बाप दादा ने कह दिया है, अब सुनिए आपके काम की चीज है। बाप दादा ने कह दिया है कि सब फिक्र या किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सागर में समा जाएगा, सागर में कुछ भी डालोगे समा जाएगा। तो बताओ अगर कोई थोड़ा बहुत फिक्र रह गया है तो बाप को दे दो। अगर आपका टिकट गुम हो गया वापस जाने का तो क्या करोगे? हाँ, चिंता करोगे या बाप आप ही आपको पहुंचा देगा वापस? फेथ रखोगे तो पहुंचा देगा, उससे भी बढ़िया टिकट दे देगा। लेकिन बाबा कहता है फेथ रखना। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराते हैं, पता है ना कौन सा गीत? क्या करें कैसे करें, कभी कभी तो ये गीत गाते हो ना, अब क्या होगा, मेरा टिकट गुम हो गया। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को ये कहता है, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति पे की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल को देखो, बहुत मजा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ, तीनों कालों का देखो सामने से, सीट के नीचे आते हो इसलिए अपसेट होते हो। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। आजकल तो खास तौर पे कहते हैं सीट का बेल्ट बांध लो, बेल्ट ना बांधो तो चलान कर देते हैं कि भाई पता नहीं सेट होए या ना हो इसको बांध दो। तो ये तो बंधन वाला कैद करने वाला सेटिंग है ना। लेकिन बाबा कहता है जो राजा होता है वो बेल्ट बांध के सीट पर नहीं बैठता। दुर्गा जी शेर पर बेल्ट बांध के नहीं बैठी हैं कि शेर हमें नचा देगा, सिंह के आसन पर बैठी है। सिंह कहते हैं शेर को, शेर होता है बादशाह जंगल का, शेर किसी से नहीं डरता, शेर से सब डरते हैं। और शेर के भी जो ऊपर बैठ जाए वो तो बादशाह हुआ ना। इसीलिए राजा की कुर्सी को सिंह आसन कहते हैं, सिंह का आसन, क्यों जो इतना पावरफुल है वो इस पर बैठेगा। तो हमें तो बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी सुमान की सीट पर सेट हो जाओ। सुमान में बाबा ने क्या कहा है, अरे मैं आत्मा हूँ, बाप का संतान हूँ, कंबाइंड हूँ, माया मेरे पास आ नहीं सकती, मुझे सिक्योरिटी गार्ड भी रखने की जरूरत नहीं है और अपने हाथ में तीर कमान रखने की भी जरूरत नहीं है। कईयों को सिक्योरिटी गार्ड पे भरोसा नहीं होता तो अपने रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, त्रेता में क्यों गए, अब कहा कि पता नहीं दुश्मन आ जाए, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, सिंहासन पर बैठ के तीर कमान रखा हुआ। बाबा कहते हैं अपसेट नहीं होंगे। कौन सी चीजें बच्चों को परेशान करती है? अब बाबा आपके दिल का भेद भी जानते हैं कि सीट से अपसेट क्यों होते हैं। चंचल मन, जैसे छोटा बच्चा पिताजी के हाथ छुड़ा के मेले में गुम हो जाता है, अपने अनाउंस कराता है मेरे पिताजी गुम हो गए हैं, है ना, ऐसा होता ना आजकल। तो बाबा कहते हैं चंचल मन, भटकती बुद्धि। भटकती बुद्धि क्या करती है, आप कहीं भी जा रहे हैं आपको पता ही नहीं लगता अगर बुद्धि भटक रही है आपने क्या भोजन किया क्या किया, भटके जा रही है, भटके जा रही है। और फिर बाबा कहता है पुराने संस्कार, वो सोचते हैं शरीर भी पुराने हैं, कपड़े भी पुराने हैं, देवी देवता तो सजे सजाए हैं और हम तो ऐसे हैं, इसलिए पुराने संस्कार साथ ले आते। बाप दादा बच्चों से एक बात सुनकर हंसी करते हैं, पता है कौन सी बात, कहते हैं बाबा क्या करें पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराते हैं, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार तो मेरा बना लिया तो मेरे को तो अधिकार हो जाता है। अब किसी बिल्ली को भी कह दो मेरी बिल्ली, वो पास आके आपकी गोद में बैठ जाएगी। तो बाबा कहते हैं आपके संस्कार हैं, जब पुराने संस्कार को मेरा कह दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? हम कह सकते हैं मेरे संस्कार पुराने, मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते, ये पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। तो मेरा मेरा कहा है तो मेरे का अधिकार लेके बैठ गए हैं। कभी आप किसी से दोस्ती कर लो और रेलवे में चढ़ जाओ और उसको टिकट ना हो तो आपको उसको पास बैठाना पड़ेगा, कि वो कहेगा मैं बैठ जाऊं ना, आप कहेंगे तेरे से दोस्ती की, अब बिठाना ही पड़ेगा, तो अंदर से आप खुश ना भी हो। इसलिए बाबा कहते मेरा नहीं है संस्कार वो। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और ये वो संस्कार हैं जिसको आप पुराने कहते हो, असल में वे पुराने भी नहीं है। बाबा कहते नकली तौर पे पुराने बन गए हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने से पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है, जिसको कहा जाता है असल और नसल। असल संस्कार आत्मा के रूप से और आदि संस्कार कुल के रूप से। तो हम किस कुल के हैं? हम हैं देवी देवता कुल के आदि संस्कार, और आत्मा रूप से परम धाम के निवासी अनादि संस्कार। वो शांति स्वरूप के हैं और वो सुख स्वरूप के हैं, दोनों पवित्रता स्वरूप के हैं। तो ये कलयुगी संस्कार मेरे कैसे हो गए, इसको तो हम छोड़ना चाहते हैं। ये तो द्वापर के मध्य काल के संस्कार हैं, तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। अपने लिए मुश्किल हो सकता है, पर जब बाबा साथ है तो आप इस संस्कार को समाप्त करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब सुनिए, परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जानकर सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोग देने वाला, लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। तो कंबाइंड रखेंगे तो आदि और अनादि संस्कार याद आएंगे, और नहीं रखेंगे तो मध्य के संस्कार याद आएंगे। बाप दादा यही चाहते हैं, सब पूजनीय आत्माएं हैं तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण क्या है, ये बाबा ने कल बहुत अच्छी बात बताई है। उस लक्षण को हम धारण कर लेंगे तो बेड़ा पार है। पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना है। भक्ति में हम वैसे कहते थे प्राणियों का उद्धार हो, सबका कल्याण हो, नहीं, दुआ देना, जो आए उसको दुआ दे दो बस, क्योंकि बाबा कहता है ब्लेसिंग देना मेरी तरफ से आपका काम है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्मा हो, तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। हम जब दुआ देंगे तो दूसरा भी बदले में दुआ देगा, तो दुआ, जो दुआ देता है, जिसको देता है, उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माओं, आपका निजी संस्कार है दुआ देना। पीछे कुछ दिन पहले आपने मुरली पढ़ी होगी कि अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, आप अगर बाप के साथ प्यार करके सो जाए तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। बाबा ने बताया है कि यज्ञ की आदि काल में बाबा ने कुछ टाइम के लिए सबका दवाई खाना बंद कर दिया था, और उनको खाली साधारण छाछ और डोडा खिलाते थे। उस पीरियड में कोई बीमार नहीं हुआ, इसलिए बाबा कहते हैं अंत में भी ये होने वाला है, क्योंकि दवाइयां सवाइयां आपको मिलेंगी नहीं। इसलिए वो जो अशरीरी अवस्था धारण करनी है पहले से धारण कर लो। बाबा कहा तो बाबा से बड़ा दवाई देने वाला कौन है, तो बाबा कहते मैं उसी को दूंगा जो अभी से दुआ देना सीखेगा। तो पूज्य आत्माओं, आपका निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, लोग आपके चित्रों के पास जाते हैं, बस चित्र ने ऐसे किया होता है, जो चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, तूफान खत्म करना चाहिए, अफसोस खत्म करना चाहिए, चिंता, सब देवता को देखते हैं, और बेचारे देखते हैं तो समझ में नहीं आता, इसलिए आंखें बंद करके देखते हैं कि वाह, देवता के आगे जाएंगे आंखें बंद कर लेंगे, क्यों, असली बात दिखे, अच्छी तरह समा जाए। तो बाबा कहते हैं आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना, ये नेचुरल संस्कार है, ताकि आपके चित्र भी दुआ दे रहे हैं, इसको कहा है कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर का संस्कार अब नेचुरल और नेचर हो गया है, वास्तव में ये संस्कार दुआ देने का नेचुरल है। जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितना खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी किया उन सबको, चाहे वो आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उनको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने दुआ देने का काम किया है उनको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते रहना और कराते रहना। एक होता है अटेंशन देकर दुआ देना, एक होता है धीरे धीरे आपकी नेचुरल नेचर ही हो जाती है कि कोई आएगा जीते रहो खुश रहो। और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी किया है और नहीं भी किया है तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हरेक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, अब बाबा ने कहा उसको बार बार स्मृति में लाना और स्वरूप में लाना। क्या मतलब हुआ, कौन से में लाना, अब आगे सुनिए। क्योंकि जब हरेक से पूछते हैं आप क्या बनने वाले हैं तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो जब लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं तो अपनी स्मृति और स्वरूप में लक्ष्मी नारायण रखेंगे कि नहीं, कि उनके जैसा हमारा हर्षित चेहरा होना चाहिए, उनके द्वारा जैसा हम संतुष्ट होना चाहिए, उनके जैसा हम सबको दुआ देने वाला होना चाहिए, अथॉरिटी वाला होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण ऐसा थोड़ी है सुबह मुस्कुरा रहे हैं शाम को उदास हैं। अगर कोई लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए, अलग अलग फोटो बनाए, एक वक्त तो दुआ दे रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, एक वक्त जाओ तो ऐसे सिर पकड़ के बैठे हैं, कोई मंदिर में जाएगा क्या। इसलिए बाबा कहता है कि अब अपना पुरुषार्थ का स्वरूप, अभी तक पुरुषार्थ का रूप सामने रखा है, लेकिन अब बाबा जो एक्सरसाइज कराते हैं अपना प्रारब्ध का स्वरूप भी सामने रखना है। नहीं तो अगर पुरुषार्थ का ही रखते रहे तो आपको लक्ष्मी नारायण की ड्रेस पहना देंगे तो आपको अजीब लगेगा। तो अभी उसके संस्कार तो धारण करने हैं ना। तब बाबा कह रहे हैं अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा जिस कमरे में बैठते हैं अब तो बाबा का चित्र लगा वहाँ, बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखते थे और बात करते करते उसको देखते थे और मुस्कुराते खुश रहते थे। और अब बाबा का टांग हिलता था खुशी से कि मैं ये बनने वाला हूँ, बार बार देखते थे। हमको भी यही करना है। तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। अब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य, पूज्य आत्मा का कर्तव्य है दुआ देना। पूज्य आत्मा कभी मांगती नहीं है, लेने की इच्छा नहीं रखती है, उसके पास देने को होता है। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा बनाओ कि हम होने वाले श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं। किचन में जाओ, कहीं भी जाओ, मार्केट में जाओ, आपकी आंख नहीं डूबनी चाहिए कलयुगी चीजों में। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, तो लक्ष्य तो यही है ना, वो हम धारण करेंगे। एक डॉक्टर बनने वाला भी एक दो साल पढ़ाई करके वो लोगों को दवाई देना शुरू कर देता है कि मैं तो डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो संकल्प करो, बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएंगे। आएगा तूफान बन के, कहते हैं कि मीरा के गले में किसी ने सांप डाला, वो हार बन गया फूलों का। मीरा को किसी ने जहर पिलाया, ये तो भक्ति मार्ग की मीरा है, और वो अमृत का प्याला बन गया। तो बाबा कहते हैं तूफान भी तोहफा बन जाएगा, हम तो बाबा के बच्चे हैं। ऐसा वरदान सदा याद रखो, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदलकर क्या रुई बन जाएगा। बाबा राई भी नहीं कहता, राई भी चुभता है, रुई। निशानी क्या है, विष्णु जी सांप की सैया पर सोए हुए हैं और सांप उनका सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। श्री कृष्ण जी नदी पार जा रहे हैं, पानी का तूफान है, सांप आकर के उनकी छतरी बना हुआ है। ये सारी कथाएं है कि नहीं है। अभी समय की समीपता के प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अभी बोलने की अथॉरिटी है, ज्ञान की अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अब दादी जानकी जी ने कल क्या किया, बस ओम शांति बाबा ही हमें खिला रहा है, बाबा ही हमारा है, जियो तो भी और मरो तो भी बाबा की याद में। तो वो शब्द आप सुने, आप देखेंगे कि आ जाती जानकी की मस्ती थी। फिर आप हमसे पूछती है, आप लोगों को खाना पीना सब बाबा से ठीक मिल रहा है ना, ये अनुभव की अथॉरिटी है। अच्छा, जब चाहो तब शरीरी अपने को शरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते काम काज करते भी एक मिनट दो मिनट निकालकर अभ्यास करो। ये एक्सरसाइज हमको करनी है। आपने देखा होगा कई फैशनेबल लोग होते हैं, अपने पर्स में शीशा रखते हैं, लिपस्टिक रखते हैं, दो घंटे बाद कहीं भी होंगे तो ऐसे करके ऐसे करेंगे, वो सुंदर दिखना चाहते नकली। तो बाबा कहते जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं वो भी जहां भी देखेंगे ऐसे करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमको भी देवता बनना है तो हम वो रूप अपना, हमारा रूप ऐसे नहीं हम सोने के जेवर पहन के बैठ जाए हम देवता बन रहे हैं, वो स्वांग होगा, अच्छा नहीं लगेगा, लोग हंसेंगे। लेकिन अपनी स्थिति को हमने ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, फरिश्ता से आत्मा बनना है, उस अंदर ही अंदर उस स्थिति का अभ्यास करना। अभी आप नीचे बैठे हैं, आप एक मिनट के लिए मन से यहां आके बैठ जाओ, फिर वापस अपनी सीट पे चले जाओ, तो आपको अशरीरी बनने का अनुभव होगा। तो फिर बाबा कहते चेक करो कि जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। ऐसा भी होता है आप सोचते हैं मैं अशरीरी बनूं और आप बेंगलुरु पहुंच जाते हो। बाबा कहते ये नहीं, चेक भी करो कि जो संकल्प किया वही बना, मन को जहां लगाना था वहीं लगाया या इधर उधर भाग गया, ये भी देखना। तो हमारी स्थिति बाबा ने बताई हुई है, अपने मन को जब चाहो जहां चाहो जितना समय चाहो वहां लगाओ और वापस लाओ, ये हमारी मन की शक्ति बढ़ाएगा। ऐसे नहीं मन को मैं कहूँ तू परम धाम चल और वो स्वर्ग में चला जाए, नहीं, मन को मैं कहूँ तू योग लगा और वो मुरली के पॉइंट सोचने लग जाए, ये भी नहीं, मन को कहूँ तू सो जा और वो जाग जाए, कहूँ जाग जा तो सोने का दिल करे, ये मन का कंट्रोल नहीं है। चारों ओर के सदा, अब बाबा की याद प्यार आ रही है, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ सुमानधारी, अर्थात जो आप सोचोगे वही आप हो। अगर आपने सोचा मैं कमजोर आत्मा हूं तो बस, तो कमजोर हर चीज आपको मुश्किल लगेगी, आपको उठना भी मुश्किल लगेगा मैं कमजोर आत्मा हूं, स्नान करना भी भारी लगेगा मैं कमजोर आत्मा हूं। और अगर शक्तिशाली समझोगे तो शक्तिशाली, इसलिए श्रेष्ठ सुमानधारी सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन और भ्रुकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी ब्राह्मणों को बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो हमारी स्थिति ही हमारा आसन है। हम किस स्थिति में हैं? अब बाबा कह रहे हैं सभी तरफ से सभी के पत्र ईमेल समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं, तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। यानी एक तो बल और बल से उसका फल, फल है खुशी, तुरंत खुशी, आप सेवा के प्रत्यक्ष फल मिलेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं और परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। अब बाबा कह रहे हैं परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं, अर्थात जो परिवर्तन आया है वो अमर हो जाए, वो पक्का हो जाए, परिवर्तन फिर बाद में ऊपर नीचे नहीं हो। जिन सेवाधारियों ने श्री मत को पूरा फॉलो किया है। ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते हैं, सदा फरमान बरदार बच्चे, वाह कि सदा ही फॉलो करते रहना, तुम्हारी वाह वाह। तो बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं, तीनों तरह के बच्चों को दे रहे हैं, परिवर्तन वाले को अमर भाव और सेवा करने वालों को दिल से सदा फरमानदार भाव। अब तीसरा, और प्यार वाले बच्चों को बहुत बहुत प्यार से दिल के में समाने वाले, अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे, ऐसा वरदान दे रहे हैं। तो जो बहुत प्यार करने वाले हैं, बाबा कहते हैं मेरे दिल में समाये रहेंगे अति प्यारे, और उनको तो माया का पता ही नहीं होगा, भगवान के दिल में समाया। क्योंकि बाबा का स्लोगन क्या है, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है, बाप साक्षी हो जाएगा। अच्छा, सेवा का नाटक जोन की है, अच्छा है, सेवा का जो चांस लिया है वह भी सभी संतुष्ट हैं और संतुष्ट किया है, इससे अपने जमा का खाता बहुत अच्छा जमा किया है, कर्नाटक की संख्या भी कम नहीं है, संख्या अच्छी है, और जैसे अभी संगठित रूप में मिलकर निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड दिखाया है, सभी सब जोन इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं, ऐसे ही आगे भी कर्नाटक संगठित रूप में बहुत कुछ कमाल कर सकता है, संगठन में बल है। हम एक बाप के हैं, एक हैं, बाप दादा के पास नक्शा है, कमाल कर सकते हैं। बाबा के पास सारा कर्नाटक का नक्शा है सेवा का, इस सबको आपने जीतना है, सबको संदेश देना है, कमाल कर सकते हैं, इसलिए संगठित रूप का जलवा दिखाना है। अभी अच्छा किया है, सारा परिवार कर्नाटक पर खुश है, सारा ब्राह्मण परिवार कर्नाटक पर खुश है। अच्छा, बाप दादा ने कर्नाटक वालों को काम दिया था, याद है क्या दिया था, वारिस क्वालिटी निकालने के लिए कहा था। बाबा कहता याद है, सेवा में तो अच्छा नंबर लिया है, अभी इतने वारिस निकालो जो नंबर वन में आ जाओ। वारिस क्वालिटी निकालने में भी नंबर वन आ सकते हैं, अगर ज्यादा वारिस निकालेंगे तो। इसके बाद बाबा ने टीचर्स, सभी टीचर्स को कहा, सभी टीचर उठो, आप उठना नहीं, टीचर्स भी कम नहीं है, बाप दादा तो सभी टीचर्स को गुरु भाई देखते हैं। गुरु भाई का अर्थ है बाप के समान, क्योंकि बाप की गद्दी पर टीचर बैठते हैं। तो टीचर्स को विशेष हर कर्म बाप समान ही करना है, क्योंकि बाप की गद्दी ली है, करेंगे नहीं, करना ही है, क्योंकि टीचर्स बाप की तरफ से स्टूडेंट के आगे एक निमित्त साकार रूप में बाप समान है। टीचर का हर कर्म स्टूडेंट के आगे बाप समान दिखाई दे, सबके मुख से निकले ये तो बाप को फॉलो करके बाप समान बने हुए हैं, तो ऐसा लक्ष्य है ना, यही लक्ष्य है ना। बाबा कहता है कांध हिलाओ, टीचर निमित्त हैं, तो निमित्त के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, तो फॉलो कर रही हो लेकिन और भी आगे करना है, लक्ष्य बहुत अच्छा है। और बाप को यही हर टीचर से शुभ भावना है कि बाप समान बनना ही है। इसके बाद दादी जानकी जी ने जो कल बोला था, कईयों को समझ में आया कईयों को नहीं आया, तो वो भी सुनिए। दादी जानकी जी कह रही हैं, ओम शांति। सारी दुनिया को पता चलता है कि डायमंड हॉल में क्या क्या हो रहा है टीवी के द्वारा। जीवन जीना है तो कैसे, अगर मरना भी होगा तो कैसे। एक बाप दूसरा हम आत्मा, वाह रे बाबा वाह, वाई वाई नहीं वाह वाह, क्योंकि कईयों को वाई वाई कहना अच्छा लगता है, अंग्रेज है ना तो वाई वाई कहते हैं, कैसे कैसे क्यों नहीं, वाह मीठे बाबा के बच्चे वाह, बाबा के बच्चों को सुख मिला है इलाही। कई तरह के सुख होते हैं, इलाही सुख किसको कहते हैं? गॉडली, जो अल्लाह से मिले, ऐसा अति इंद्रिय सुख। किसी को ना दुख देना है ना लेना है, सिर्फ बोलना ही नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल में करना है। प्रैक्टिकल में ना किसी को दुख देना है ना लेना है। अच्छा, अब आगे अगला सेंटेंस दादी जानकी का बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई हमारे को दुख देवे हम लेवे नहीं, वह बेचारा है ना, वो बाबा क्या उसको कहो बेचारा, ये बेचारा मुझे दुख देने की कोशिश कर रहा है, तो लेना उस पर तरस करें, हम क्यों दुख लें? जब उसने दुख दिया आपने लिया ही नहीं, तो दुख किसके पास रहा? उसके पास रहा, वो बेचारा है। बाबा के सब बच्चों ने बाबा को दिल तखत पर बिठा दिया है, हमें वाणी से परे वानप्रस्थ में रहना है। दिलाराम बाबा है, उसके तीन बच्चे सुख शांति और प्रेम अच्छी सेवा कर रहे हैं। इतनी सारी सभा को देखकर शुक्रिया बाबा आपका, आप सबको बुलाते हो, खिलाते हो, सबको खाना ठीक मिलता है ना, सोने का ठीक मिलता है ना, ये दादी पूछ रही है। फिर आगे, गुलजार दादी बाबा का रथ है ना, क्योंकि सारी मुरली तो गुलजार दादी के रथ से चली है, हमें जो बाबा कहे वो करना ही है। दादी गुलजार अभी वहाँ सुन रही है ना, सुनो दादी, देखो हमारे शांति वन में कितना बड़ा डायमंड हॉल है, सारा फुल है, सब आपको याद कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की रिवीजन, कल की बाप दादा की मुरली का। तो हमने सब कुछ सुना, एक बार रिवाइज किया कि बाबा कहता है, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार, इसी का नाम लेकर के बच्चे पुरुषार्थ को ढीला कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये सब मध्यकाल के संस्कार हैं। आदिकाल का संस्कार है दुआ देना, तो दुआ देना शुरू करेंगे तो ये संस्कार समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। अब साइलेंस करेंगे, ओम शांति।